ओम शांति, ओम शांति। वैसे कहा जाता है कि ये मानव जीवन अमूल्य जीवन है, लेकिन बाबा कहते हैं इस मानव जीवन जो अमूल्य जीवन है उसमें भी ये ब्राह्मण जीवन अति अमूल्य है। क्यों अति अमूल्य है? क्योंकि इस संगम युग पर भगवान हम बच्चों को बहुत ऊंची खुराक खिलाते हैं, क्योंकि हम इतने ऊंचे हैं ना, तो कौन सी खुराक खिलाते हैं? एक तो हम कहेंगे खुशी की खुराक, खुशी की खुराक खिलाते हैं जिससे हम मन से शक्तिशाली बनते हैं। लेकिन वो खुशी की खुराक का भी आधार क्या है? उसका आधार है ज्ञान और योग जो बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं। तो इस ज्ञान और योग रूपी खुराक से आत्मा और शरीर दोनों शक्तिशाली बन जाते हैं। इसलिए इस संगम युगी ब्राह्मण जीवन को कभी भी व्यर्थ नहीं गवाओ। कभी भी ये नहीं सोचो बाबा मैं जल्दी शरीर छोड़ूं। अगर कोई बीमार भी है तो भी उसकी अच्छी सेवा करो ताकि वो जीता रहे और इस ब्राह्मण जीवन में बाबा को याद करता रहे। हम देखते हैं ना, हमारे मधुबन में भी डॉक्टर कुमुद बहन को हम देखते हैं, चाहे कैसा भी उनका शरीर है लेकिन सदा खुश रहती है। इतनी खुश रहती है जो बात मत पूछो, सदा मुस्कुराती रहती है और सदा उसके हाथ में मुरली होती है। चाहे वो चल नहीं पाती है, काफी उम्र हो गई है, लेकिन खुशी की खुराक खूब खाती है। और इसलिए बाबा कैसे उनकी आयु भी बढ़ाते रहते हैं और उनकी सेवा भी हो रही है। तो बाबा कहते हैं कि खुशी की खुराक खाते रहो तो आयु बढ़ती जाएगी जरूर, और सेवा भी उनकी करनी है जरूर, क्योंकि आखिर शरीर तो पुराना है। तो इसीलिए इस जीवन को जो अमूल्य जीवन है इसकी संभाल भी पूरी करनी है ताकि आत्मा बाबा को याद कर सके और इसी शरीर में कर्मातीत बनकर बाबा के साथ घर जा सके। तो खुशी की खुराक सदा खाते रहो, ये आज की मुरली का सार है। तो सुनते बाबा के माँ वाक्य आज 10/1/2025 है। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें ज्ञान योग की खुराक खिलाकर जबरदस्त खातरी करते हैं। किसकी खातरी की जाती है? तो उसको जलपान भोजन भी अच्छा दिया जाता है तो ये उसकी खातरी हुई ना। तो बाप तुम्हें ज्ञान योग की खुराक खिलाकर जबरदस्त खातरी करते हैं तो सदैव खुश मौज में रहो और श्रीमत अनुसार सबकी खातरी करते चलो। खातरी करते चलो शरीर की भी तो मन बुद्धि की भी, खातरी करते चलो। प्रश्न है, इस संगम युग पर आपके पास सबसे अमूल्य चीज कौन सी है? तो कौन सी अमूल्य चीज जिसकी संभाल करनी है? आत्मा तो अमूल्य है ही, फिर साथ साथ ये ब्राह्मण जीवन भी अमूल्य है, तो इसकी भी संभाल करनी है। उत्तर है, इस सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल में आपकी ये जीवन, ब्राह्मण जीवन अमूल्य है, इसलिए शरीर की संभाल भी जरूर करनी है। ऐसे नहीं ये तो मिट्टी का पुतला है, हाँ छोड़ो इसकी क्या संभाल करे, नहीं तो ऐसे नहीं ये तो मिट्टी का पुतला है, कहाँ कहाँ ये खलास हो जाए, ये सोच भी ना आए कि कहाँ ये खलास हो जाए। नहीं, इनको जीते रखना है। कोई बीमार होते हैं तो उनसे तंग नहीं होना चाहिए कि हमको उनकी सेवा करनी पड़ेगी इसलिए ये जल्दी चला जाए, नहीं। बाबा कहते अंत तक वो रहे तो बाबा को याद भी कर सकता है और वो खुद भी कहे कि हाँ मैं अंत तक रहूं और बाबा कम से कम खुशी की खुराक खाता रहूं, तो इससे भी सेवा होती है। जाते ना कई हॉस्पिटल में जाते हैं किससे मिलने के लिए, चाहे वो कितना भी बीमार है लेकिन वो बहुत खुश है, तो हमें भी खुशी होती है कि देखो ये खुश कितना है, वर्णन भी करते हैं। तो बाबा कहते हैं तो ये ऐसे कभी नहीं सोचना कि ये मिट्टी का पुतला है, कहाँ ये खलास हो जाए, नहीं, इनको जीते रखना है। कोई बीमार होते हैं तो उनसे तंग नहीं होना चाहिए, सुना, ये बहुत बड़ी सीख है। कोई बीमार होते तो उनसे तंग नहीं होना चाहिए, उनको बोलो तुम शिव बाबा को याद करो, जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे, उनकी सर्विस करनी चाहिए, जीता रहे, शिव बाबा को याद करता रहे। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बाबा कुछ दिनों से तीसरे नेत्र की बात कर रहे हैं, उस दिन भी बाबा ने कहा तीसरे नेत्र से आत्मा और परमात्मा को देखो, इस तीसरे नेत्र से तीनों कालों को देखो, तीनों लोकों को देखो, तो इस तीसरे नेत्र से बहुत काम लेना है। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, अभी तुम बच्चे जानते हो कि ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बिचारे मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है, हाँ वो भी समझते हैं कि कुछ विनाश तो होगा ही, लेकिन ये दुनिया बदल रही है और पर कौन बदला रहा है ये नहीं जानते, और कैसे बदलाते हैं ये भी नहीं जानते, क्योंकि उनको ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। तुम बच्चों को अभी ये ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। ये है ज्ञान की सैक्रीन। ज्ञान अमृत भी है, ज्ञान खुराक भी है, ज्ञान सैक्रीन भी है। ये है ज्ञान की सैक्रीन। सैक्रीन की एक बूंद भी कितनी मीठी होती है, इतना बड़ा कप और उसमें एक बूंद केवल सैक्रीन की डालते हैं तो वो जो उसका कप में है वो मीठा हो जाता है, कितनी मीठी होती है। ज्ञान का एक ही अक्षर है, वो ज्ञान की सैक्रीन का एक ही बूंद है, एक ही अक्षर है, कौन सा, मन मनाभव। ये अक्षर कितना मीठा है, मन मनाभव। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बाप शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने, तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। ज्ञान योग से तो खुशी होगी, लेकिन ये भी अगर स्मृति है कि बाबा आए हैं हमको स्वर्ग का वर्षा देने, तो कितनी खुशी होगी। कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, जो सदैव खुश मौज में रहते हैं उन्हों के लिए तो जैसे ये खुराक हो जाती है, खुशी की खुराक हो जाती है उनके लिए जो सदा मौज में रहते हैं। 21 जन्म मौज में रहने की ये जबरदस्त खुराक है, केवल इस जन्म में मजे में नहीं, 21 जन्मों तक मजे में रहने के लिए ये सबसे जबरदस्त खुराक है। ये खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो, कौन सी, मनमना भव की खुराक, हर एक को याद दिलाते रहो बाबा की। ये खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो, ये है एक दो की जबरदस्त खातरी। शिव बाबा याद है, हाँ ये सबको याद दिलाते रहो, ये सबसे बेस्ट खातरी है। यह है एक दो की जबरदस्त खातरी, ऐसी खातरी और कोई मनुष्य मनुष्य की कर न सके। हाँ वो कभी नहीं ऐसे कहेंगे कि शिव बाबा को याद करो, अंत घड़ी जब किसकी आती है तब उनको जरूर कहते हैं भगवान को याद करो, भगवान को याद करो, पर सारा जीवन तो उसने याद किया ही नहीं, तो अंत में भी कहाँ भगवान याद आता है। तो ये है एक दो की जबरदस्त खातरी, ऐसी खातरी और कोई मनुष्य मनुष्य की कर न सके। तो तुम बच्चे श्रीमत पर सभी की रूहानी खातरी करते हो, हर एक को याद दिलाते हो कि शिव बाबा को याद करो, ये बाबा कहते हैं ये रूहानी खातरी सबकी आप करते रहते हो। सच्ची सच्ची खुश खैराफत भी ये है, हाँ कैसे हो, ठीक हो, मजे में हो, ऐसे तो कहते हैं, लेकिन सच्ची खुशी ये है कि जब उसको बाबा की याद दिला, वो सच्ची खुश खैराफत है। किस ये तो सच्ची सच्ची खुश खैराफत भी ये है किसको बाप का परिचय देना। तो मीठे बच्चे जानते हैं बेहद का बाप द्वारा, बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की सौगात मिलती है। हाँ कितनी जबरदस्त ये सौगात है जीवन मुक्ति की। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था, बाप बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं। तब तो गायन है ना, इतनी ऊंची खुराक देते हैं जिसका क्या गायन है कि अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, क्योंकि ये सबसे बढ़िया सबसे ऊंची खुराक भगवान हमको देते हैं। ये ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है, और ये खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है, रूहानी सर्जन ही ये खुराक देते हैं। और किसको ये खुराक का मालूम ही नहीं है, ज्ञान योग की खुराक का किसी भी मनुष्य को पता नहीं, ये भगवान ही देते हैं खुराक। और किसको ये इस खुराक का मालूम ही नहीं है, बाप कहते हैं मीठे बच्चों तुम्हारे लिए ये तिरी पर मैं सौगात लाया हूँ, हथेली पर सौगात लाया हूँ। सिंधी में तिरी कहते हैं, ये जो बीच का स्थान है ना, इसको तिरी कहते हैं सिंधी में, हथेली। तो बाबा कहते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति की यह सौगात मेरे पास ही रहती है, हाँ मैं ही देता हूँ, और कोई दे नहीं सकता और किसी के पास नहीं है। मुक्ति जीवन मुक्ति की ये सौगात मेरे पास ही रहती है, कल्प कल्प मैं ही आकर तुमको ये सौगात देता हूँ। फिर क्या होता है, अब सौगात तो मिल गई, उसका बहुत सुख भी ले लिया, फिर 21 जन्म तो बहुत सुख लिया, फिर क्या होता है, फिर ये सौगात तुम्हारी रावण छीन लेता है। हाँ कैसा दुश्मन, हमारी ये सौगात स्वर्ग की रावण छीन लेता है। तो अभी तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, तुम जानते हो हमारा एक ही बाप टीचर और सच्चा सच्चा सतगुरु है जो हमको साथ ले जाते हैं। मोस्ट बिलवेड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है, ये कम बात है क्या? विश्व की बादशाही और वो भी देने वाला कौन? मोस्ट बिलवड बाप, ये कम बात है क्या? बच्चों को सदैव हर्षित रहना चाहिए। हर्षित रहने के लिए बाबा और स्मृति दिलाते हैं, गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज दी बेस्ट। हमारा ये ईश्वरीय विद्यार्थी जीवन है, अंत तक विद्यार्थी जीवन है। एडल्ट एजुकेशन सिखाते हैं ना, कई है जो बुजुर्गों को एजुकेशन देते हैं, उनके लिए अलग ऐसे स्कूल भी है। नीचे आया हुआ है ग्रुप एडल्ट एजुकेशन के का, वो उनका स्थान है। तो सब एडल्ट्स को जो बड़े हैं उनको पढ़ाते हैं। कई है भारत में अक्षर ज्ञान ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अक्षर ज्ञान देते हैं। लेकिन उन्होंने कहा हम ये अपनी जो ये कॉन्फ्रेंस है हम आपके कैंपस में करना चाहते हैं, और क्योंकि उसमें से कई है जो बाबा के बच्चे भी हैं, तो इसीलिए उनको कहा अच्छा ठीक है, तो हमारे कैंपस में कल उन्होंने किया ट्रेनिंग सेक्शन में ऊपर भी आएंगे, देखेंगे कैसे। वो अच्छे अच्छे प्रोफेसर हैं, लेकिन एडल्ट एजुकेशन, बड़ों के लिए एजुकेशन, बच्चों के लिए तो शिक्षा बहुत है, लेकिन अब बचपन में पढ़ाई की नहीं। कई ऐसे हैं तो वो बड़े होकर के एजुकेशन ले लेते तो बहुत बड़ी बात है। तो बाबा कहते हैं हमारे लिए सदैव गॉडली स्टूडेंट लाइफ है, चाहे कितनी भी आयु क्यों न हो जाए, क्योंकि उसमें लिखा है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ऐसे नहीं खाली बचपन में ही पढ़ाई की, सारा जीवन वास्तव में पढ़ाई है। हर कदम कदम पर हम सीखते हैं, तो हर कदम कदम पर सीखना माना लाइफ लॉन्ग, सारा जीवन पढ़ाई है। तो हमारे लिए तो वैसे ही गॉडली स्टूडेंट लाइफ है। तो गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज दी बेस्ट, ये अभी का ही गायन है ना। फिर नई दुनिया में तुम सदैव खुशियां मनाते रहेंगे। दुनिया ये नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशियां कब मनाई जाएगी। मनुष्यों को तो सत्यु का ज्ञान ही नहीं है, तो यहाँ ही मनाते रहते हैं, समझते यहाँ ही खुशी है, लेकिन सत्युग की खुशी की भेंट में ये खुशी तो कुछ भी नहीं है, तो इसलिए वो यहाँ ही मनाते हैं, समझते हम यहाँ ही खुशी में खुशी मनाते हैं। इसलिए सत्युग का ज्ञान ही नहीं है तो यहाँ ही मनाते रहते हैं खुशियां। परंतु इस पुरानी, हाँ बाबा कहते हैं इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई? यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते हैं, कितना दुख की दुनिया है। बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं, ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। सबसे सहज रास्ता है ये। धंधा धोरी आदि करते भी मुझे याद करते रहो। जैसे आशिक और माशुक होते हैं वो तो एक दो को याद करते रहते हैं, एक आशिक होगा दूसरा उसका माशिक होगा, एक दो को याद करते रहते हैं, वो उनका आशिक वो उनका माशुक। यहाँ ये बात नहीं है, हम सबका माशुक एक ही है और सारी सब कौन है? आत्माएं आशिक। तो इतनी सारी आशिक और एक माशुक, और वहां तो एक आशिक एक माशुक होता है बस। तो बाबा कहते यहाँ वो बात नहीं है, तो यहाँ ये बात नहीं है, यहाँ तो तुम सभी एक माशुक के जन्म जन्मांतर के आशिक रहे हो। हम केवल अभी नहीं बाबा को भगवान को याद कर रहे हैं, आधा कल्प से हम याद करते आए हैं, तो आधा कल्प के हम आशिक है ना, उस माशुक के जन्म जन्मांतर के आशिक रहे हो। बाप तुम्हारा कभी आशिक नहीं बनता, वो नहीं आशिक बनता, वो माशूक ही है सदा, हम आशिक है। तुम उस माशूक को आने लिए याद करते रहते हो, आओ हे माशूक आओ हे परमात्मा आओ। हाँ, तुम उस माशूक को आने लिए याद करते आए हो। जब दुख जास्ती होता है तो जास्ती सिमरण करते हो, दुख में तो सिमरण होता ही है भगवान का। तो जास्ती सिमरण करते हो जब दुख होता है, तभी तो गायन है ना, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। इस समय जैसे बाप सर्वशक्तिवान है, सर्वशक्तिवान है इस समय बाप, लेकिन दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिवान तमो प्रधान होती जाती है। इसलिए अब बाप कहते हैं, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो। तुम ऐसे, हाँ बाबा के आगे लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलेट है, तो तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। इस पढ़ाई में मुख्य बात है ही याद की। तो ऊंचते ऊंच बाप को बहुत प्यार स्नेह से याद करना चाहिए। वो ऊंचते ऊंच बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। तो बाप कहते हैं, मैं आया हूँ तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। विश्व का मालिक बनाने बाप आए हैं, इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाएंगे। पतित पावन बाप कहते हैं, तुम बहुत पतित बन गए हो। पर कोई मनुष्य समझ थोड़ी रहा है मैं पतित हूँ, पर बाबा तो समझ रहे हैं ना, सब पतित बन गए हो, इसलिए अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं ना, तो अब बाप आए हैं, बुलाया पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, तो वो पतित पावन बाप अब आए हैं, तो जरूर पावन बनना पड़े। बुलाया ही इसीलिए पावन बनाने लिए, तो जरूर बनना पड़े पावन। बाप दुख हरता सुख करता है, बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी थे। हाँ, जब तक पावन नहीं बने तब तक सदा सुखी तो बन नहीं सकते। तो बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी ही थे। अब बाप फिर से कहते हैं, बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करो, अभी है संगम युग। खिवैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं, नैया कोई एक नहीं है। हाँ, एक एक पुकारता मेरी जीवन नैया पार करो, तो बाबा कहते एक एक नैया नहीं है जीवन की, लेकिन ये सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है, ये पूरे जहाज को ही बाबा ले जाते हैं वापस, एक एक नैया की बात नहीं है, पूरा जहाज है, उनको पार ले जाते हैं। तो मीठे बच्चों को कितनी खुशियां होनी चाहिए, तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी ही खुशी है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं, वाह चढ़ाओ नशा, बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं, वाह ये तो कभी न सुना न पढ़ा। पहले तो कभी किसी ने न सुनाया न कहीं पढ़ा कि बेहद का बाप आके पढ़ाते भी हैं। भगवानो वाच, मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखला रहा हूँ, तो पूरी रीति सीखना चाहिए ना, भगवान सिखला रहे हैं तो पूरी रीति सीखना चाहिए ना, धारणा भी करनी चाहिए। चलो सीख लिया तो केवल थियरी थोड़ी है, उसका प्रैक्टिकल भी तो है ना, तो धारणा भी करनी चाहिए, पूरी रीति पढ़ना चाहिए। पढ़ाई में नंबर वार तो सदैव होते ही है, बाबा जानते हैं, सब समझते हैं कि पढ़ाई में सब नंबर वार होते हैं, तो अपने को देखना चाहिए मेरा नंबर कहाँ है। अपने को देखना चाहिए मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ व कनिष्ठ हूँ, पढ़ाई मेरी कैसी है, कनिष्ठ है, मध्यम है या उत्तम है। तो बाप कहते हैं, अपने को देखो, मैं ऊंच पद पाने के लायक हूँ, अगर उत्तम है पढ़ाई तो जरूर ऊंच पद मिलेगा, मध्यम है तो उसी अनुसार पद मिलेगा, कनिष्ठ है तो और भी उससे नीचा होगा पद। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते अपने को देखो, मैं ऊंच पद पाने के लायक हूँ, रूहानी सर्विस करता हूँ, चारों सब्जेक्ट्स में हमको नंबर चाहिए, न तो रूहानी सर्विस करता हूँ। क्योंकि बाप कहते हैं बच्चे सर्विसेबल बनो, फॉलो करो। बाबा कितना सर्विसेबल, अंत तक बाबा ने सेवा की, तो बाबा कहते हैं फॉलो करो। मैं आया ही हूँ सर्विस के लिए, रोज सर्विस करता हूँ। कौन सी रोज सर्विस करते हैं बाबा? मुरली सुनाते हैं तो ये रोज सर्विस करते हैं, इसलिए ही तो ये रथ लिया है। ये ब्रह्मा रथ इसलिए लिया ताकि सर्विस कर सके। इनका रथ बीमार पड़ जाता है तो मैं इनमें बैठ मुरली लिखता हूँ। हाँ, कई बार ऐसे हुआ बाबा को, एक दो बार थोड़ा ऑपरेशन था, माइनर ऑपरेशन हर्निया का कुछ ऐसे था, तो हॉस्पिटल में थे तो अभी मुरली तो नहीं चला सकते थे, तो फिर बाबा लिखते थे। शिव बाबा कैसे ब्रह्मा बाबा से लिखवाते थे, इतना फास्ट 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 बाबा लिखते थे, पलंग पर बैठकर हॉस्पिटल में बैठकर और बच्चों को मुरली भेजते थे। तो बाबा कहते हैं रोज सर्विस करता हूँ इसलिए तो ये रथ लिया है। इनका रथ बीमार पड़ जाता है तो मैं इनमें बैठ मुरली लिखता हूँ। मुख से तो बोल नहीं सकते तो मैं लिख देता हूँ ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस न हो। वो लिखत की फिर मुरली बनती थी जो बाबा ने लिखा, और फिर वो सबको मिलती थी। तो बच्चों के लिए मुरली मिस न हो तो मैं भी सर्विस पर हूँ ना, ये है रूहानी सर्विस। तो तुम बच्चे भी बाप की सर्विस में लग जाओ। बाबा रूहानी सर्विस करते हैं, बाप करते, तो बच्चे भी लग जाए रूहानी सर्विस में। ऑन गॉड फादरली सर्विस, जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, अच्छी सर्विस करते हैं, उनको क्या टाइटल मिलेगा? तो उनको तो पहले तो बता, उत्तम पुरुष, उत्तम करने, उत्तम है तो उत्तम स्टूडेंट है। अब दूसरा नाम बाबा क्या देते हैं उनको? फिर महावीर कहा जाता है, वो महावीर है। देखा जाता है कौन महावीर है जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप का फरमान है सबसे नंबर वन, फरमान बाप का कौन सा है? अपने को आत्मा समझ, भाई भाई को देखो, इस तीसरे नेत्र से सबको आत्मा देखो, भाई भाई देखो। इस शरीर को भूल जाओ, बाबा भी शरीर को नहीं देखते हैं। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को देखता हूँ, बाकी ये तो ज्ञान है। हाँ, ये तो ज्ञान है। कौन सा? कि आत्मा शरीर बिगड़ तो बोल नहीं सकती है, इसलिए मुझ आत्मा को भी ये शरीर मिला है बोलने के लिए, और जिनको सुनाता हूँ वो भी, उनको भी शरीर मिला हुआ है सुनने के लिए, क्योंकि कान और मुख ये तो सब शरीर में है। तो बाकी ये तो ज्ञान है कि आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकती। मैं भी इस शरीर में आया हूँ, लोन लिया हुआ है, शरीर साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। अब शरीर ही न हो तो आत्मा पढ़ेगी कैसे? शरीर तो चाहिए न पढ़ने के लिए। शरीर साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। बाबा की यह बैठक, कौन सी बैठक? हाँ, बाबा की यह बैठक यहाँ है, भ्रिकुटी में है। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आके बैठते हैं भ्रिकुटी में, तो वो उनकी बैठक है, वो बैठक का स्थान है। ये है अकाल तख्त। आत्मा अकाल मूर्त है। आत्मा कब छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। जो भी आत्माएं हैं उन सभी का तख्त ये भ्रिकुटी है। शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न होते हैं। किसका अकाल तख्त पुरुष का, किसका अकाल तख्त स्त्री का है, और किसका अकाल तख्त बच्चे का है। अब छोटे बच्चे का भी तो उतना वो अकाल तख्त होगा ना, तो स्त्री का, पुरुष का, बच्चे का, अकाल तख्त बच्चे का है। तो बाप बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं। जब कोई से बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो, मैं आत्मा बोल रही हूँ, पहले अपने आप को आत्मा समझो। हम आत्मा फलाने भाई से बात करता हूँ, ये सोचो। बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो। याद से ही जंक उतरनी है, बिना याद के जंक जो लगी हुई है आत्मा पर विकारों की वो कैसे उतरेगी। याद से ही जंक उतरनी है। सोने में जब एलॉय पड़ती है तो सोने की वैल्यू ही कम हो जाती है। हाँ, हो जाती है ना कम, कहाँ 24 कैरेट और कहाँ 9 कैरेट मुलम्मा बन जाता है, उसमें इतनी खाद पड़ती है। तो बाबा कहते हैं जब सोने में जब एलॉय पड़ती है तो सोने की वैल्यू ही कम हो जाती है। तुम आत्माओं में भी जंक पड़ने से तुम वैल्यू लेस हो गए हो, तुम्हारा कोई मूल्य ही नहीं है। हाँ, इसलिए कहा ना हीरे तुल्य ये मानव जीवन है, लेकिन अभी कौड़ी तुल्य मानव गंवा रहा है अपना जीवन, तो इसलिए वैल्यू लेस हो गया, उसका कोई मूल्य ही नहीं है। तुम वैल्यू लेस हो गए हो, अब फिर पावन बनना है। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, उस नेत्र से अपने भाइयों को देखना है। हाँ, ये प्रैक्टिस है ना, आत्मा ज्ञान के नेत्र से भाइयों को देखती है। तो बाबा कहते हैं भाई उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो। भाई भाई को देखने से क्या होगा, सबसे पहला लाभ क्या होगा? सबसे पहला लाभ भाई भाई को देखने से कर्म इंद्रियां चंचल नहीं होगी। नहीं तो आंखें भी धोखा देती है, मुख भी धोखा देता है, सब हाथ भी धोखा देते हैं ना, चंचल हो जाती है इंद्रियां। तो भाई भाई को देखने से कर्म इंद्रियां चंचल नहीं होगी। राज्य भाग्य लेना है, विश्व का मालिक बनना है, तो यह मेहनत करो। भाई मैं आत्मा भाई दूसरे भाई को देख रहा हूँ, आत्मा को देख रहा हूँ, ये मेहनत करो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो, तो फिर ये आदत पक्की हो जाएगी। टेव पक्की हो जाएगी, आदत पक्की हो जाएगी। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तो तुम सभी हो। सच्चे भाई वो लौकिक में जो भाई भाई है वो भी एक दो के दुश्मन बन जाते हैं ना, सगे भाई एक दो के दुश्मन बन जाते, पर तुम बाबा कहते सच्चे सच्चे भाई भाई तो तुम हो जो एक दो को आत्मा देखते हो। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तो तुम सभी हो। बाप भी ऊपर से आए हैं, तुम भी आए हो। सच्चे भाई भाई हो, एक ही घर के वासी हो, एक ही पिता की संतान हो, उस एक ही घर से आए हो। बाप बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं, अभी बाप भी सर्विस कर रहे हैं और बच्चे भी उनके सर्विस कर रहे हैं। बाप के साथ साथ ही हम आए हैं, अवतार लिया है ना संगम योगी ब्राह्मण जीवन का। तो बाबा कहते हैं बाप बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं। सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं, हिम्मत है बच्चे मदद है बाप। तो ये प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ, आत्मा पढ़ती है ना, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। क्या पढ़ती है आत्मा? आत्मा को क्या पढ़ा रही है? स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक शिक्षा, जो रूहानी बाप से ही मिलती है। संगम पर ही बाप आकर ये नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम नंगे आए थे, फिर यहाँ शरीर धारण कर तुमने 84 जन्म पाठ बजाया है, अब फिर वापस चलना है। हाँ, तैयार है ना सब, वापस चलना है। इसलिए अपने को आत्मा समझ, भाई भाई की दृष्टि से देखना है, ये मेहनत करनी है, अपनी मेहनत करनी है, खुद के लिए मेहनत करनी है। बाबा कहते हैं दूसरे में हमारा क्या जाता है? अब दूसरे को देखेंगे तो मेहनत करता ही नहीं है, अमृत वेले उठता ही नहीं है, मुरली में आता ही नहीं है। हाँ, ये क्यों नहीं करता, क्यों नहीं करता, उसको ही देखते रहते और उसको देख करके खुद भी सो जाते। तो फिर बाबा कहते दूसरों को क्यों देखते हो? इसलिए बाबा कहते दूसरों से हमारा क्या जाता। हाँ भाई, वो जो कर रहा है वो जाने, हमको तो अपनी मेहनत करनी है। दूसरे में हमारा क्या जाता, चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले अपने ऊपर मेहनत करो, ये चैरिटी है। हाँ, यही सच्चा दान है, आत्मा को देना है। चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ, फिर भाइयों को समझाओ, तो अच्छी रीति तीर लगेगा। आत्मा समझ, आत्मा को समझाएंगे तो अच्छी रीति तीर लगेगा, क्योंकि दिल से समझाएंगे, और दिल से समझाएंगे तो दिल को तीर लगेगा तो घायल हो जाएगा। अगर देह अभिमान में समझाएंगे, माना देह अभिमान माना दिमाग से समझा रहे, दिमाग हाँ मैं बहुत होशियार हूँ, बहुत होशियारी से समझा रहा हूँ, कितनी नई नई पॉइंट्स देता हूँ, अलग ढंग से देता हूँ, तो दिमाग ही केवल चलाता, तो फिर क्या होता है, वो दिमाग में गया और उड़ गया। दादियां हमारी दिमाग से नहीं सुनाती थी, दिल से सुनाती थी। ऐसे जो सुनता था बस लगता था दादी को सुनते जाए सुनते जाए। तो इसीलिए बाबा कहते हैं पहले खुद को आत्मा समझ, फिर भाइयों को समझाओ, तो अच्छी रीति तीर लगेगा। ये जौहर भरना है, आत्मिक स्थिति में रहकर आत्मा को समझाना, ये जैसे जौहर भरता है आपके ज्ञान के तीर में, ये जौहर भरना है। मेहनत करेंगे तभी ऊंच पद पाएंगे, इसमें कुछ सहन भी करना पड़ता है। अब वो आपको कुछ बुरा भला भी कहेगा, तुम ये क्या करते हो, क्या सुनाते हो, ये तो हमारे शास्त्रों में नहीं, कुछ भी बोले, लेकिन सहन भी करना पड़ता है। जब कोई उल्टी सुलटी बात बोले तो तुम क्या करो, तुम चुप रहो। अब वो उल्टी सुलटी बात कर रहा है, पता नहीं क्या क्या सुना रहा है, पर तुम चुप रहो। तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा, ताली तो दो हाथ से बजती है, एक ने मुख से ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वो आप ही चुप हो जाएगा दूसरा भी। ताली से ताली बजने से आवाज हो जाता है। बच्चों को एक दो का कल्याण करना है, बाप समझाते बच्चे सदैव खुशी में रहना चाहिए। हाँ, सदैव खुशी में रहना चाहते हो तो मन मना भाव, सदैव खुशी में रहना चाहते हो तो मन मना भाव। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो और भाइयों तरफ देखो। आत्मा आत्मा भाई, तो खुद भी भाई और दूसरे को भी भाई रूप में देखो। तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की आदत डालनी है, तुम्हारे ही फायदे की बात है। रूहानी यात्रा सतत चलती रहे तो तुम्हारे फायदे की बात है। बाप की शिक्षा भाइयों को देनी है। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूँ, आत्मा को ही देखता हूँ। बाबा शरीरों को नहीं देखते, आत्मा को ही देखता हूँ। बाबा कहते हैं मनुष्य मनुष्य से बात करेंगे तो उनके मुंह को देखेंगे ना। अब सामने है वो और उनसे हम बात कर रहे हैं तो वो व्यक्ति तो दिखाई देगा ना, उनका चेहरा तो दिखाई देगा। पर तुम आत्मा आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को ही देखना है। प्रकृति में आत्मा विराजमान है तो उसको शरीर, उस शरीर को नहीं देखो, आत्मा को देखो प्रकृति में। भर शरीर द्वारा ज्ञान देते हो, दे तो तुम शरीर द्वारा ही हो ना, मुख द्वारा ज्ञान दे रहे हो, पर दूसरे को आत्मा देखो। भर शरीर द्वारा ज्ञान देते हो परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना होता है। तुम्हारी आत्मा समझती है कि परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं, तो बाप भी कहते हैं आत्माओं को देखता हूँ। बाबा भी जब ज्ञान देते हैं, ब्रह्मा तन द्वारा भी बाबा ने ये ज्ञान दिया, मुरली वही चली, तो आत्माओं को देख करके सुनाया ना। तो बाप भी कहते आत्माओं को देखता हूँ, आत्माएं भी कहती है हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसको कहा जाता है आप परमात्मा आत्माओं को देखकर नॉलेज दे रहे हैं और आत्माएं परमात्मा को देख रही है, इसको क्या कहा जाता है, स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन। स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन, जब आत्मा आत्मा को देख करके ज्ञान देवे। स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन आत्मा की आत्मा के साथ। आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा को ही ज्ञान देना है। ज्ञान तो आत्मा ही धारण करेगी ना, शरीर थोड़ी धारण करता है। तो आत्मा को ही ज्ञान देना, ये जैसे जौहर है, ताकत आ जाएगी देने में, ज्ञान देने में। तुम्हारे ज्ञान में ये जौहर भर जाएगा तो किसको भी समझाने से झट तीर लग जाएगा। बाप कहते हैं प्रैक्टिस करके देखो, तीर लगता है ना। ये नई टेव डालनी है। कौन सी नई टेव, कौन सी नई आदत डालनी है? आत्मा आत्मा को देखे तो फिर शरीर का भान निकल जाएगा, माया के तूफान कम आएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। हम आत्मा ने 84 का चक्र लगाया, अब नाटक पूरा होता है। अब बाप की याद में रहना है। याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया का मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है, मुश्किल है क्या? नहीं, कितना सहज है। बाप जानते हैं बच्चों को ये शिक्षा देना भी मेरा पार्टी है। जब तक बाबा नहीं आया था, बाबा ने ज्ञान नहीं सुनाया था, तब तक कहाँ था हमारे पास ज्ञान। तो ये बाबा कहते हैं ये शिक्षा देने का पार्ट मेरा ही है, शिव बाबा का ही है। पर कोई नई बात नहीं है, मैं ही देता हूँ, पर कोई नई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष बाद हमको आना होता है। मैं बंधाई मानूं, आना ही पड़ता है। मैं चाहूं कि इस कल्प में मैं नहीं जाऊं सृष्टि पर, बाबा कहते ऐसे नहीं होगा, बंधाई मानूं। तो आना ही पड़ता, मैं बंधाई मानूं। बच्चों को बैठ समझाता हूं, मीठे बच्चे रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंत मति सो गति हो जाएगी। ये अंत काल का समय है ना, अंत काल चल रहा है। माम एकम याद करो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। याद की यात्रा से पाया मजबूत हो जाएगा। पाया माना जैसे टेबल का ये पाया है ना, जो चार जो ऐसे जिसको पाया कहते हैं, या गाड़ी का भी पाया होता है जो उसका व्हील होता है। तो बाबा कहते हैं तो याद की यात्रा से पाया मजबूत हो जाएगा। ये देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है, फिर नहीं मिलेगी सारे कल्प में। बच्चे देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो, अभी संगम पर बाप आके सुन कहते हैं। ये शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। तो कितना वंडरफुल ज्ञान है। बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है। कब और कोई बता न सके सिवाय बाबा के। अभी वापस चलना है, इसलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चों यही प्रैक्टिस करो, आत्मा आत्मा को देखे यही प्रैक्टिस करो। अपने को आत्मा समझ, आत्मा को ज्ञान दो। तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना है, यही बड़ी मेहनत है। सबसे बड़ी मेहनत यही है। ये है तुम ब्राह्मणों का सर्वोत्तम ऊंच से ऊंच कुल। इस समय तुम्हारा जीवन अमूल्य है, इसलिए इस शरीर की भी संभाल करनी है। शरीर को भी निग्लेक्ट नहीं करना है। समय पर उठना है, समय पर भोजन देना है, समय पर सोना है। ये सब समय पर करो तो देखो एवर हेल्दी बन जाएंगे, क्यों नहीं बनेंगे। तो बाबा कहते इस समय तुम्हारा जीवन अमूल्य है, इसलिए इस शरीर की भी संभाल करनी है। तमो प्रधान होने कारण शरीर की आयु भी कम होती गई है। अब तुम जितना योग में रहेंगे उतनी आयु बढ़ेगी। तुम्हारी आयु बढ़ते बढ़ते कितनी हो जाएगी, 150 वर्ष की हो जाएगी सतयुग में। इसलिए शरीर की भी संभाल करनी है। ऐसे नहीं ये तो मिट्टी का पुतला है, कहाँ ये खलास हो जाए। नहीं, इनको जीते रखना है। जब तक ये शरीर जिंदा है जीता रहे, जीते रखना है। ये अमूल्य जीवन है ना, कोई बीमार होते हैं तो उनसे भी तंग नहीं होना चाहिए। हाँ, मर जाए तो अच्छा है ना, ऐसे कई सोचते ना, ये हिंदी में कहावत भी है कि न ये न मंजा छोड़ता न ये मरता है। भाई या तो मंजा छोड़ो, पलंग छोड़ो और चलो खुद ही मेहनत अपनी अपने बल पर, या तो मर जाओ। तो न ये मरता है न मंजा छोड़ता है, बस पड़ा है बिस्तर पर। लेकिन बाबा कहते तो भी सेवा तो करनी है। हाँ, ऐसे कई दिखाते, क्या क्या दिखाते रहते हैं। एक बेटी है, उसको दलिया खिलाना है पिता को, वो खा नहीं सकता, पिता को खिलाना है तो वो चम्मच लेती है और साथ में मोबाइल भी देख रही है। अब मोबाइल देख रही है तो वो पिता के मुंह में जा रहा है या कहीं गिर रहा है वो भी नहीं देखती है। चलो बस ये है कि मुझे पिता को खिलाना, और वो नीचे गिरता रहता है, पिता बोल भी नहीं पाता है और वो गिराती रहती है और मोबाइल देखती रहती है। ये थोड़ी सेवा होती है, सेवा तो प्यार से करनी होती है ना। तो देखो बाबा कहते हैं तो कोई बीमार होते हैं तो उनसे तंग नहीं होना चाहिए, उनको भी बोलो शिव बाबा को याद करो, जितना याद करेंगे उतना उनके पाप कटते जाएंगे, उनकी सर्विस करनी चाहिए, जीता रहे शिव बाबा को याद करता रहे। ये समझ तो रहती है ना कि हम बाबा को याद करते हैं, आत्मा याद करती है बाप से वर्षा पाने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति, मात पिता सिकील दे बच्चों प्रति, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, अपने को देखो, मैं पुरुषार्थ में उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ, मैं ऊंच पद पाने के लायक हूँ, मैं रूहानी सर्विस करता हूँ। दूसरा, तीसरे नेत्र से आत्मा भाई को देखो, भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो, आत्मिक स्थिति में रहने की आदत डालो तो कर्म इंद्रियां चंचल नहीं होगी। वरदान, ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव। ब्रह्मा बाप समान महात्याग, हाँ, ब्रह्मा बाबा ने तो महात्याग किया ना, ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव। फरिश्ता सो विश्व महाराजन बनने का वरदान उन्हीं बच्चों को प्राप्त होता है जो ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले हैं, जिनका मन बुद्धि संस्कार सदा बाप के आगे समर्पित है। जैसे ब्रह्मा बाप ने इसी महात्याग से महान भाग्य प्राप्त किया, अर्थात नंबर वन संपूर्ण फरिश्ता और नंबर वन विश्व महाराजन बने, ऐसे फॉलो फादर करने वाले बच्चे भी महान त्यागी व सर्वस्व त्यागी होंगे, महान त्यागी और सर्वस्व त्यागी होंगे। संस्कार रूप से भी विकारों का वंश का त्याग करेंगे। स्लोगन, अभी सब आधार टूटने हैं मनुष्यों के, जो भी आधार है सब टूटने हैं, इसीलिए एक बाप को अपना आधार बनाओ। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। इतनी सारी प्रकृति को परिवर्तन करना है, कितना बड़ा काम है। अब इतनी सारी प्रकृति को परिवर्तन करना तमोगुणी संस्कारों वाली आत्माओं को तमोगुणी वाइब्रेशन को बदलना और स्वयं को भी ऐसे खूने नाहक वायुमंडल के वाइब्रेशन से सेफ रखना तथा उन आत्माओं को सहयोग देना, इस विशाल कार्य के लिए मनसा को शुभ भावनाओं से संपन्न शक्तिशाली बनाओ। बहुत बड़ा काम है ये मनसा सेवा द्वारा कर सकते हैं। तो उसके लिए स्वमान क्या रखना है, मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूं, सारे विश्व का मुझे परिवर्तन करना है। और योग अभ्यास क्या करना है उसके लिए, मैं मस्तक मणि हूं, विश्व परिवर्तन के निमित्त हूं, सर्वशक्तिवान शिव बाबा की छत्र छाया के नीचे बैठ प्रकृति सहित तमोगुणी वायुमंडल को शुभ भावना के सकाश से सतो प्रधान बनाने में सहयोग दे रहा हूं। और धारणा क्या करो, प्रकृति पति की स्मृति में रहना है। शिव बाबा है प्रकृति पति, तो प्रकृति पति की स्मृति में रहना है। चौथा चिंतन क्या करो, स्थापना के विशाल कार्य को संपन्न करने के लिए मुझे क्या क्या करना है उसका चिंतन करो। इतना बड़ा स्थापना का विशाल कार्य है, उसको संपन्न करने के लिए मुझे क्या क्या करना है वो चिंतन करो और उस अनुसार पुरुषार्थ करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। सबको पता तो होगा ही कि आज मधुबन निवासी भाई बहनों को बाबा की 18 जनवरी की गिफ्ट मिलने वाली है। तो सभी समर्पित भाई बहनों को आज सुबह 10 बजे 18 जनवरी के निमित्त कॉन्फ्रेंस हॉल में सौगात दी जाएगी। तो 10 बजे के अंदर कॉन्फ्रेंस हॉल में मधुबन निवासी सभी समर्पित भाई बहने बैठेंगे और उनको सौगात मिलेगी। आज गरम गरम भुट्टा बाबा के कमरे के पास आंगन में मिल रहा है, तो जरूर जैसे जाएंगे पांडव भवन में तो गरम गरम भुट्टा जरूर लेंगे आंगन में। ओम शांति। सभी अभी बाबा की याद में बैठेंगे, फिर डबल विदेशी बैठे रहेंगे।